आस्तिक इस समय एक डॉक्टर के केबिन में बैठा हुआ था। डॉक्टर आस्तिक का सेशन कर रहे थे। डॉक्टर ने आस्तिक से कहा, राजा साहब, आप दवाई तो टाइम पर ले रहे हैं ना? आस्तिक हाँ मैं सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ डॉक्टर, मैं दवाई बिल्कुल टाइम पर ले रहा हूँ, पर बात क्या है? डॉक्टर कहता है, नहीं ऐसी ज़्यादा कोई घबराने वाली बात नहीं है, मैं तो आपसे जेन्युइनली पूछ रहा हूँ, क्या इन दिनों आपने गुस्सा करने की या फिर हिंसक होने की कोशिश की है? आस्तिक कहता है, नहीं डॉक्टर, जब से मैंने दवाइयाँ लेना शुरू किया है और आपकी सलाह मानी है, तब से मैं अपने गुस्से पर ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ और चाहता हूँ कि सामने वाले को अपनी नाराज़गी ना दिखाऊँ, पर मुझे नहीं पता कि मैं ये कब तक कर पाऊँगा, क्योंकि कभी कभी मुझे सच में बहुत गुस्सा आता है और किसी की जान लेने का मन करता है। वो तो तब आपकी दवाइयाँ सहारा बन जाती हैं, वरना अब तक तो मैं पुराना वाला आस्तिक ही होता। डॉक्टर कहते हैं, वेल राजा साहब, ये तो अच्छी बात है कि आप अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर आप इसे बिना दवाइयाँ के करेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। मतलब पूरी तरह से दवाइयाँ आपको कहाँ तक ठीक रख सकती हैं? गुस्सा आना ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये तो किसी इंसान की फीलिंग्स हो सकती हैं। अगर आपका स्वभाव भी गुस्सैल है तो इसमें कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। आस्तिक कहता है, मैं जानता हूँ डॉक्टर कि गुस्सा आना कोई बीमारी नहीं है, पर मैं क्या करूँ, मेरे गुस्से की वजह से लोगों को तकलीफ़ होती है। और उसके बाद आस्तिक अपने मन में कहता है, मेरे गुस्से की वजह से मैंने अरुणिमा को कितनी तकलीफ़ दी है। मुझे नहीं पता, जब अरुणिमा के सामने मुझे गुस्सा आता है तो मैं उसके साथ क्या कर सकता हूँ, और जब बाद में मैं होश में आता हूँ तो अपने ही किए पर पछताता हूँ। इसीलिए मैंने दवाई लेना शुरू किया ताकि मैं अरुणिमा को नुकसान ना पहुँचा सकूँ, लेकिन फिर भी कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मेरा गुस्सा मुझ पर हावी हो रहा है। वो तो शुक्र है कि उस वक्त मैं अरुणिमा आसपास नहीं रहता हूँ, वरना अब तक पता नहीं कितनी बार अरुणिमा को मैं नुकसान पहुँचा चुका होता। पिछले एक महीने से ऐसा ही था। आस्तिक लगातार वो दवाइयाँ खा रहा था, क्योंकि जब उसे ऐसा लगता कि उस पर गुस्सा हावी हो रहा है तो वो उन दवाइयों को खा लेता। हालांकि वो दवाइयाँ उसका गुस्सा कम नहीं करती, लेकिन वो उसके दिमाग को उस समय के लिए इस तरीके से कंट्रोल कर लेती कि वो उस समय या तो सोना चाहता था या फिर कहीं अकेले में रहना चाहता, इसीलिए वो अरुणिमा के आसपास नहीं रहता था। अरुणिमा को पहले तो ये थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर उसे लगा शायद प्रणाली की शादी के बाद आस्तिक थोड़ा बदल गया है। वहीं दूसरी तरफ सिंघल के बाहर के इलाके में बहुत सारे बड़े बड़े कोठियाँ और फार्म हाउस हैं। इस कोठी में एक लड़की फर्श पर बैठकर पोछा लगा रही थी, तभी एक औरत उसके पास आती है और उसके बालों को पकड़ते हुए उसके गाल पर एक थप्पड़ मारती और कहती है, मैंने गलती कर दी, तुझे मजबूर समझकर घर का काम दे दिया, पर तूने तो उल्टा सारा काम खराब कर दिया, देख ठीक से पोछा भी नहीं लग पा रही है। वो लड़की उसे औरत के पैरों पर गिरती है और अपने हाथ जोड़ते हुए कहती है, नहीं मालकिन, मुझे काम से मत निकालिए, मुझे काम की बहुत ज़रूरत है, मुझे मेरी माँ का इलाज करना है, इसके लिए मुझे काम करना होगा, मुझे काम से मत निकालिए, मैं आपका सारा काम कर दूंगी, मैं फिर से पोछा लगा देती हूँ, पर मुझे काम से मत निकालिए। उस औरत ने चिढ़ते हुए उस लड़की को देखा और चिल्लाते हुए कहा, मिश्री साड़ी छोड़ मेरी, तेरे पोछे वाले हाथ से मेरी साड़ी गंदी हो जाएगी, और जाकर पोछा लगा, और अगर इस बार तूने ढंग से पोछा नहीं लगाया ना तो तुझे उठाकर बंगले से बाहर फेंक दूंगी और पैसे भी नहीं दूंगी। मिश्री हाँ में सिर हिलाती है और अपने आंसू साफ करते हुए फिर से पोछा लगाने के लिए पानी लेने चली जाती है। पिछले एक महीने से मिश्री घर घर जाकर काम कर रही थी। शारदा जी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, अब तो उनसे ठीक से बात भी नहीं किया जा रहा था। वो बात करते करते बहुत ज़्यादा क्रोधित होने लगी थी और किसी को भी कुछ भी उठाकर फेंक मारती थी। उनकी दिमागी हालत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही थी, इसीलिए आस्तिक की कंपनी ने उन्हें काम से निकाल दिया था। रोजगार का एकमात्र माध्यम भी उनसे छिन गया था। उन्हें रोटी पानी तक की दिक्कत हो गई थी। अपनी माँ को इस हालत में देखकर मिश्री ने अपनी माँ को घर पर ही रखना सही समझा, और उनकी दवाइयों का खर्चा और जिंदा रहने के संघर्ष के लिए मिश्री खुद काम ढूंढने निकल पड़ती है। पर बात यह थी कि मिश्री अभी 18 साल की नहीं थी, इसीलिए कोई भी कंपनी उसे जॉब नहीं देती। इस हालत में मिश्री को ना चाहते हुए भी मजबूरी में घर का काम करना पड़ता है। मिश्री जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रही थी और शारदा जी की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। पर इन सब के बीच बात ये हो रही थी कि शारदा जी और अरुणिमा का कहीं से भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। यहाँ तक कि आस्तिक ने अरुणिमा को शारदा जी की हालत के बारे में कुछ भी नहीं बताया है। अरुणिमा को तो यही लगता है कि उसकी माँ आज भी अपने प्रिंटिंग प्रेस में काम कर रही है और मिश्री के 10th के बोर्ड चल रहे हैं। इसके अलावा अरुणिमा को ये नहीं पता है कि उसकी माँ के साथ क्या हुआ है और मिश्री किस हालत में है, क्योंकि आस्तिक ने कभी भी अरुणिमा के परिवार की खबर उस तक पहुंचने ही नहीं दी। शारदा जी इस समय अपने घर पर अपने कमरे में थी। मिश्री उन्हें घर के कमरे में बंद करके जाया करती थी, क्योंकि अगर वो बाहर निकल जाएगी तो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। इसीलिए वो उन्हें एक सिंपल सा कीपैड वाला फोन देकर घर के अंदर बंद करके चली जाती है। मिश्री ने कीपैड वाला फोन इसीलिए दिया था ताकि किसी भी मुसीबत में उससे बात की जा सके। शारदा जी अपने कमरे में बैठी हुई थी और इस वक्त उनके हाथ में अभय की तस्वीर थी। वो अभय की तस्वीर से बातें कर रही थी, तभी उनका फोन बजता है। वो बिना नंबर जांचे फोन उठाती हैं और कान से लगाते हुए कहती हैं, कौन बोल रहा है? सामने से किसी ने कहा, क्या तुम्हें अभय के कातिल से नहीं मिलना है? जानना नहीं चाहती हो वो कौन है? सामने वाले की बात सुनकर शारदा जी का पूरा चेहरा पसीने से भर गया और उनकी धड़कन अचानक से तेज हो गई। वो चिल्लाते हुए कहती हैं, कौन हो तुम? तुम अभय को कैसे जानते हो और तुम्हें पता है उसका कातिल कौन है? लेकिन सामने वाले इंसान ने शारदा जी के सवालों का जवाब नहीं दिया, बल्कि उससे कहा, अगर तुम्हें सच में अभय के कातिल के बारे में जानना है तो अभी इसी वक्त आकर मुझे पुरानी फैक्ट्री में मिलो।